ಸ್ಥಿರಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸಹಗಣಾ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಂ ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಆಜ 18 ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾ ದಿನ ಹೈ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾ ದಿನ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾ ದಿನ ಭೀ ಹೈ ಆಜ ಯಾನಿ ಕಿ ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಜ ಶ್ರೀ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ಯಾನಿ ಜನ್ಮ ದಿವಸ ಭೀ ಹೈ ಔರ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಧ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸುನ್ನಾ ಯೇ ಜೋ ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾ ದಿನ ಹೈ ವೈಸೆ ಭೀ ಬಹುತ್ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಹೈ ಇಸ್ ದಿನ ಮೇ ಜೋ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಕಾರ್ಯ ಸೇವಾ ಆಪ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ತೆ ಹೀ ವೋ ಸಿದ್ಧ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಭೀ ಆಪ್ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ನಯಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನಿ ಹೈ ನಯಿ ನಯಾ ಕುಛ್ ವ್ರತ ಲೇನಾ ಹೈ ನಯಾ ಕುಛ್ ವಚನ ದೇನಾ ಹೈ ಯಾ ಜಿಸ್ಸಿ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಭಜನ್ ಶುರು ಕರ್ನಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಭಜನ್ ಬಡಾನಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ವಾದಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ ವಾದೆ ಕೋ ಉಸ್ ವ್ರತ ಕೋ ಯಶಸ್ವಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಜ್ ಕಾ ದಿನ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ ಅಬ್ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಮೇ ನಾಮ್ ಲೇನಾ ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಕಿಸಿ ಕೋ ಬತಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಭಜನ್ ಆಪ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಜೋ ಭೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ ವೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ನಾ ಬಹುತ್ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಹೈ ಔರ್ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಜಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬತಾಯೆಂಗೆ ಯಹಾಂ ಕಿ ಕಥಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಪಹಲೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಜಿ ಖೇತುರಿ ಗ್ರಾಮ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಥಾ ಯೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಬಹುತ್ ಹೀ ನಿಕಟ್ ಕೆ ಪಾರ್ಷದ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ಕಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ಯಾನಿ ಕಿ ಜನ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಅಂತರ್ಧಾನ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕಾ ಭಾವ ಲೇಕರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇನ್ಕಾ ವಿತರಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಡೇ ಹೀ ಕರುಣಾ ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬನ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ 1486 ಮೇ ಫಾಲ್ಗುನ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ ದಿನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹುವಾ ಥಾ ಯಾನಿ ಕಿ ಆಜ್ ಸೇ ಠೀಕ್ ಏಕ್ ಮಹೀನೆ ಬಾದ್ ಔರ್ ಬಲರಾಮ್ ಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬನೆ ಥೇ ತೋ ಏಕ್ ದಿನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಬ್ ಅಪ್ನಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ ರಹೇ ಥೇ ತೋ ಖೇತುರಿ ಗ್ರಾಮ ಗಏ ಆಜ್ ಯೇ ಖೇತುರಿ ಗ್ರಾಮ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮೇ ತೋ ವಹಾಂ ಪದ್ಮಾ ನದಿ ಹೈ ಪದ್ಮಾ ನದಿ ಕಿನಾರೆ ಪೇ ಗಏ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೇ ಕರ್ತೇ ಔರ್ ಅಚಾನಕ್ ಅಪ್ನೆ ಪಾರ್ಷದೋ ಕೋ ಲೇಕರ್ ರುಕ್ ಗಏ ಔರ್ ಬೋಲ್ನೆ ಲಗೇ ನರೋತ್ತಮ ನರೋತ್ತಮ ಬೋಲಿಯೇ
ನರೋತ್ತಮ
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 ಸಬ್ ಭಕ್ತ ಲೋಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಹೋ ಗಏ ಕಿ ನರೋತ್ತಮ ಇನ್ಕಾ ನಾಮ ತೋ ಸುನಾ ನಹೀ ಹಮ್ನೆ ಹಮಾರೆ ಪಾರ್ಷದ ಮೇ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಹಮಾರಾ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಹೈ ಉನ್ನೆ ಬಹುತ್ ದಿನ ಪೂಜನೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕೇಳಿ ನರೋತ್ತಮ ನರೋತ್ತಮ ಪುಕಾರತೆ ರೇ ಭಾವ ವಿಪುಲ ಹೋಕರ್ ಜಬ್ ಶಾಂತ ಹೋಗೇ ತೋ ಉನ್ನೆ ಪೂಛಾ ಯೇ ನರೋತ್ತಮ ಕೌನ್ ಹೈ ತೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ನೇ ಉತ್ತರ ದಿಯಾ ಕಿ ಮೇರಾ ಸಬ್ಸೆ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಹೈ ಔರ್ ಇಸಿ ಗ್ರಾಮ ಮೇ ಜನ್ಮ ಲೇನೆ ವಾಲಾ तो वो महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी पद्मा नदी में स्नान करते हैं। तो पद्मा नदी जो है देवी, पद्मा देवी उस नदी की देवी प्रकट हो जाती है और भगवान चैतन्य महाप्रभु पद्मा देवी को आदेश देते हैं कि मैंने मेरे हृदय में जो भी प्रेम है कृष्ण के प्रति वो इस तुम्हारे नदी के जल में मैंने स्थापित कर दिया है। यथावकाश मेरे भक्त जो है नरोत्तम दास यहाँ पर प्रकट होंगे और जब भी वो यहाँ पर पहली बार आएंगे तो ये मेरा प्रेम उनके हृदय में आपको स्थापित करना है। तो पद्मा देवी बहुत प्रसन्न हो गई और सब भक्त लोग जो है बड़े आदर के साथ भर गए उस नरोत्तम के लिए जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। कैसा महान भक्त होगा, महाप्रभु जी हृदय का जो सार प्रेम है उनका वो उनको भेंट देना चाहते हैं। यथावकाश नरोत्तम दास का जन्म होता है, ये कायस्थ थे यानी कि जाति थोड़ी निचली थी उनकी, लेकिन इनके पिताजी राजा थे और इनके छोटे भाई का नाम संतोष है, ये बड़े भाई थे सबसे, तो राज्य कारोबार संभालने का इन्हीं के ऊपर जिम्मा था उसके बाद राजा के बाद। लेकिन जन्म से इनको कोई रुचि नहीं थी किसी भी व्यवहार में, किसी भी संसारी वस्तु में, चीज में, कार्य में विरक्त रहा करते थे हमेशा। तो पिताजी भी चिंतित थे उनके बारे में। एक दिन ये घूमते घूमते चले गए और कई दिन घर नहीं लौटे, तो परेशान हो गए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, सब जगह ढूंढा उनको, कहीं दर्शन नहीं हुआ उनका। फिर कुछ लोग नदी के पास गए, पद्मा नदी के पास, तो पद्मा नदी के पास में नरोत्तम जी बेहोश पड़े थे, उनका रंग जो है वो सांवला सा था, मतलब गहरा रंग था, लेकिन उस समय जब बेहोश अवस्था में थे तो उनका वर्ण जो है वो सुनहरे रंग का हुआ था, तेज स्वर्ण रंग का, गोरे गोरे रंग का तेज जो है गौर वर्ण प्रकाशित था उनके शरीर से और बेहोश अवस्था में निश्चेष पड़े थे। फिर पता चला कि जब वो नदी में उतरे स्नान किया तो नदी ने पूरा कृष्ण प्रेम जो उनके पास था चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ वो उनके हृदय में प्रस्थापित किया हुआ। जैसे ही ये प्रेम प्रकट हुआ हृदय में तब तो एकदम वो बेकाबू होकर बेहोश हो गए और उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला को समाप्त करके अर्धधान हो चुके थे, उस समय नदी में प्रकट हो गए और उस दिव्य अवस्था में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन दिया जल के अंदर बड़े प्रेम से और वो अंतर्धान हो गए। तो कई दिन के बाद उनको होश आया, तब तो पूरा संसार से विरक्त हो गए जब महाप्रभु चैतन्य की कृपा हुई उनके ऊपर और कुछ दिन बाद अपना काम छोड़कर वृंदावन चले गए, क्योंकि उसका कारण यह था कि उनके स्वप्न में दोबारा चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाओ और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ले लो। तो वृंदावन चले गए सब कुछ छोड़कर, उनके छोटे भाई संतोष दत्त थे वो राजा बन गए और नरोत्तम जी वृंदावन आए, तब लोकनाथ जी गोस्वामी महाराज जो कस्तूरी मंजरी के अवतार हैं वो और भूगर्भ गोस्वामी सब वृंदावन के वनों में भटक रहे थे। उस समय वृंदावन जो था पूरा जंगल था, सब स्थान लुप्त हो चुके थे जो आज हमारे लिए प्रकट है, सब स्थान लुप्त हो चुके थे। तो वनों में भटकते थे भजन करते करते आंखों में आंसू लेकर विरक्त अवस्था में, और लोकनाथ जी महाराज बड़े ही विरक्त थे, मतलब उनको कोई संसार में कोई कनेक्शन नहीं, केवल रोते थे वो भगवान की भजन करते थे। उनके पास पहुंचे और विनती किया कि आपको हमें स्वीकार करना है शिष्य के रूप में, हम आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे शिष्य विषय बनाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो इस अवस्था में नहीं हूँ कि शिष्य लूँ, उसको शिक्षा दूँ, उसकी देखभाल करूँ, उनको हेल्प करूँ, तो किसी और के पास जाओ। तो निराश होकर लौटे, दोबारा गए, फिर विनती किया, फिर उन्होंने नकार दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक साल में एक कोटी नाम जप करके आओ, ऐसे टालने के लिए बोल दिया। उन्होंने एक साल भर एक कोटी हरि नाम जप किया, जो गणित करेंगे आप तो आपको लगेगा कि नामुमकिन है, 365 दिन में 1 करोड़ जप करना बहुत नामुमकिन। दिन रात बैठ के उन्होंने जप किया और फिर लौट के आए, फिर भी उन्होंने मना किया। तो यहां पर एक वन है जहां पर हम जाएंगे आज दोपहर के समय, खदीरवन, ये कथा नहीं बता देते हैं क्योंकि आज उनका दिन है, दिन की शुरुआत नरोत्तम दास जी के गौरव से करने से हमारा यात्रा भी सफल होगा, सबको कृपा मिलेगी उनकी। तो ये लोकनाथ जी महाराज इतने विरक्त थे कि उनको कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं हुआ करती। जैसे कि किसी हरे व्यक्ति को अगर कुछ ना कुछ सेवा की जरूरत होती है, क्या पानी चाहिए या कोई गर्म पानी चाहिए, कुछ टॉवेल चाहिए या कुछ बिस्तर चाहिए, कंबल चाहिए, इतने विरक्त थे, कोई जरूरत नहीं थी। मतलब सबसे अमीर थे वो। सबसे अमीर कौन होता है? जिसको सबसे कम जरूरत होती है। और सबसे गरीब कौन होता है? जिसको जरूरतें बहुत होती है, जिसके ऊपर खर्चे मेंटेनेंस के बहुत होती है। तो आप चाहिए कि आपको क्या बनना है, सबसे गरीब बनना है कि सबसे अमीर बनना है? दुनियादारी के हिसाब से गरीब होना मतलब कुछ जेब में पैसा नहीं होना, और भगवान के हिसाब से गरीब होना मतलब कम से कम जरूरत, सबसे अमीर है सॉरी, और जिसको सबसे कम जरूरत है वो सबसे अमीर है, और जो सबसे ज्यादा जरूरत रखते हैं अपने आप को, बहुत सारा उनको चाहिए सुविधा, तो सबसे गरीब होते हैं। तो उनके पास में सेवा करने का प्रयास करने लगे, वो कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, कुछ मौका ही नहीं सेवा करने का। भिक्षा मांग के सूखी रोटी खाते थे, अपने आप जल लेके स्नान करते थे, शौच जाते थे, सब कुछ, कोई सेवा का मौका नहीं। लेकिन नरोत्तम दास जी उनकी सेवा करने के लिए इतने निश्चय से आए थे, जिसको सेवा की इच्छा होती है ना उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, सेवा मिल जाती है। हम लोग भी कैंप में सेवा करते हैं, कुछ कुछ लोग सेवा के बहाने यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, गायब हो जाते हैं सेवा से, और कुछ लोग सब कुछ मौका होने पर भी सेवा पे डगे रहते हैं, एकाग्र से, एकाग्र दृष्टि से। सेवा वही है जो एकाग्र दृष्टि से की जाए, तो सेवा में कोई बाधा नहीं होती, यहाँ वहाँ मन भटकता नहीं है कहीं, सेवा के अंदर और कोई मोटिवेशन नहीं होता है कि चलो सेवा के आगे सेवा करेंगे, पीछे मोटिवेशन रखेंगे और उसको पूरा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सेवा वो है जो सब कुछ सुख, आध्यात्मिक सुख भी त्याग करके वो सेवा को आदमी छोड़ता नहीं है, वही सही सेवक होता है। नरोत्तम दास जी को सेवा नहीं मिल रही थी, फिर ढूंढ रहे थे सेवा क्या की जाए, उन्होंने एक सेवा ढूंढ ली कि जब नरोत्तम दास ठाकुर सॉरी जब लोकनाथ जी महाराज सुबह शौच करने जाया करते जंगल में, तो उस जगह को वो साफ कर देते, जहां पर शौच किया है उस शौच को साफ करके, जगह साफ करके अगले दिन के लिए जल रखे, तैयार रखते भी जंगल झाड़ी के अंदर। और ऐसा भी नहीं कि शाम को रिपोर्ट करते थे कि हमने आपके लिए सेवा किया। सेवा एक होती है जिसके लिए, एक सेवा होती है जिसके लिए हम बहुत अप्रिशिएशन चाहते हैं, सेवा करने के बाद कुछ आवाज की चाहिए, थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए किसी, तो हमको अच्छा लगता है। और एक सेवा का भाव ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं चले क्या सेवा हो रही, एकदम निरपेक्ष भाव। निरपेक्ष भाव मतलब नो नॉट इवन एप्रिसिएशन ऑल्सो, किसी को पता ही नहीं है कि सेवा क्या हो रही है और क्या त्याग किया और क्या कष्ट सहन किया और क्या तकलीफ हुई सेवा में। हमारा ऐसा स्वभाव होता है कि हम जो सेवा करते हैं तो थोड़ा वही कष्ट होता है, तो हम लोग 10 लोगों को बताते हैं, देखो इतना कष्ट था, इतना समय था, इतना परेशानी हो गई, इतना कष्ट हो गया, तो लोग बोलेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मैं बहुत त्याग किया, बहुत अपना बढ़िया काम किया, तो हम पूरा ठीक है, 4 लोगों को मालूम हो गया तो अच्छा हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन सेवा जो है, इस सेवा के अनेक उच्च स्तर होते हैं, उसमें जो उच्च स्तर है वो निरपेक्ष, किसी प्रकार की उसमें एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, पारितोषिक, बख्शीश कुछ नहीं होता उसके लिए। तो नरोत्तम दास जी सेवा कर रहे थे, किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, यहां तक कि जिनके लिए सेवा कर रहे हैं उनको पता नहीं था। लेकिन रोज शौच हो जाते हैं लोकनाथ जी महाराज, देखते हैं अरे जगह पर इतना साफ सफाई किसने करके रखा है, इतना साफ बना के रखा है, एकदम बढ़िया से जल रखा है वहां पर मटके में, तो रोज जाके देखते हैं तो फिर तैयार है एकदम साफ सुथरा। इतने जंगल में, इतने घने जंगल में कौन आएगा सेवा करने? तो एक दिन शौच का बहाना करके जाते हैं, लेकिन उस जगह से जाके अलग जगह झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं देखने के लिए कौन है। तो एकदम रात के मतलब भले सवेरे के अंधेरे में आंख में आंसू लेकर उस जगह साफ कर रहे हैं नरोत्तम दास जी। तो लोकनाथ जी को पता था कि राजकुमार है, मतलब राजा होने के योग्य हैं अपने गांव के, तो उन्होंने जाके झपट लिया उनके पीछे से, नरोत्तम क्यों कर रहे हो ऐसा तुम, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो एकदम क्या कहते हैं एकदम जिसका कोई मूल्य नहीं, ऐसा मैं आदमी हूं, तुम राजकुमार हो, राजा बनने के योग्य हो, क्यों मेरी ऐसी सेवा कर रहे? मैंने कहा कि अगर राजकुमार हूं तो क्या लाभ है उसका, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, जब संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, तो मेरे सब वस्तुओं का लाभ क्या है? मेरे बुद्धि का, मेरे जन्म का और मेरे राजा होने का, राजकुमार होने का क्या लाभ है? तो उस समय जंगल में ही उन्होंने को घरे लगा दिया, भले सवेरे उसी समय शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ये लीला हुई थी खदेर वन में, जहां पर हम जाने वाले हैं। खदेर वन में लोकनाथ जी महाराज ने नरोत्तम दास जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, फिर भी उनको उनकी वो अवस्था नहीं थी कि वो उनको आगे शिक्षा दें और बढ़ाएं और कुछ करें। उनको उन्होंने आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाकर जीव गोस्वामी के शरण में आगे की शिक्षा प्राप्त करें, और अपने शिष्य को जीव गोस्वामी के पास सौंप दिया। नरोत्तम जी जीव गोस्वामी के पास गए और उन्होंने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और आगे की शिक्षा, शास्त्र अध्ययन, सब नियम का शिष्टाचार का पालन, ये सभी जो है ये नरोत्तम दास जी ने जीव गोस्वामी से सीखा। नरोत्तम दास जी हमारे संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही प्रगत आचार्य हैं, वंदनीय आचार्य हैं। उनका अनंत कथा है उनकी। जब दोबारा लौटते थे खेतों ग्राम में, तो वहां पर एक चावल का गोदाम था और उस चावल के गोदाम में बहुत सांप थे, बहुत भयंकर सांप। कभी कोई पास से गुजरता तो ऐसा आवाज होता वहां से, तो कोई मन नहीं करता था। और सब लोगों को पता था कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा धन है, बहुत ही कीमती धन है इसके अंदर, लेकिन किसी के जाने की हिम्मत नहीं हो रही। चोर भी नहीं और अच्छे लोग भी नहीं। जब नरोत्तम दास लौट के आए बहुत साल के बाद अपने भाई के पास, संतोष दत्त के पास, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर स्थिति है, तो कहेंगे हम जाएंगे अंदर। सब लोग उठते मचाओ, लेकिन नरोत्तम दास उस चावल के गोदाम में प्रवेश करते हैं, सारे सांप जो है उस गोदाम से बाहर निकल जाते, एकदम नम्रता से कोई आवाज न करते हुए तुरंत निकल जाते। और चावल के गोदाम से 5 विग्रह ठाकुर जी के वो प्रकट करते हैं। यही धन था सबसे बड़ा, हाँ, कोई हीरे मोती चांदी जवाहरात नहीं थे उसके अंदर। 5 ठाकुर जी के विग्रह प्रकट किए और उनके भाई को बताया उन्होंने, उनमें से 2 विग्रह जो है राधा ब्रज, व्हाट इज द लेडी, ब्रज ब्रजमोहन, राधा ब्रजमोहन और चैतन्य महाप्रभु का विग्रह था अकेले। वो दोनों विग्रह बोट से संतोष दत्त जो है वो वृंदावन ले जाए। आज भी हम लोग वृंदावन जाएंगे तो वहां पर एक जगह है जगन्नाथ घाट के पास, गोपी उद्धव मिलन स्थली, वहां पर गोपी उद्धव का संवाद हुआ था, उसी के सामने ये मंदिर है राधा ब्रजमोहन। बहुत पुरातन मंदिर है और इस मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर का पहना हुआ हरिनाम चादर भी है, इतना जीर्ण हो चुका है वो, बहुत संभाल के रखा है उसको। उसको अगर ऐसा हाथ 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 में ऐसा करेंगे तो पाउडर हो जाएगा वो, इतना जीर्ण हो चुका है। तो बहुत ही संभाल के रखा हुआ है, मैंने दर्शन किया उसका। और श्रीमद् भागवत जो वो पढ़ा करते थे नरोत्तम दास जी महाराज, वो भी वहां पर रखा है। और जो शालिग्राम शिला का वो पूछते थे राधा ब्रजमोहन के साथ, वो भी शिला उस मंदिर में रखा है और वहीं पर नरोत्तम दास जी रहे। अपने गाँव की तरफ से और देश की तरफ से उनको बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे और प्रचारक बने, भक्त बने, संत बने, तो ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई उनके बारे में, उनकी वो निंदा करने लगे, उनको नीचा दिखाने लगे, उनके लिए अपशब्द बोलने लगे। लेकिन फिर भी वो शिष्य लेते थे, स्वीकार करते थे, तो और उनको ईर्ष्या होती थी ब्राह्मणों की। तो एक दिन उन ब्राह्मणों के उद्धार के लिए भगवान ने लीला किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर पद्मा नदी में स्नान करने गए और स्नान करके बाहर आए तो उनके शरीर पर अपने आप ही सुनहरा जनेऊ प्रकट हो गया, ग्रामीण थ्रेड चमकता हुआ, हजारों सूर्य के प्रकाश की तरह चमकता हुआ ग्रामीण थ्रेड जो है उनके शरीर में प्रकट हो गया। सब ब्राह्मणों ने देखा उनके आंखों के सामने, फिर सब ब्राह्मण उनके शरण में गए। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं और उसमें से बहुत सारी प्रार्थना लिखी उन्होंने। उनके जो प्रार्थना संग्रह है वैष्णव भजन, उसका नाम ही प्रार्थना है, और कई प्रकार के उनके प्रार्थना संग्रह उपलब्ध है। बहुत ही हृदय की गहराई और भावना की उच्चता और भावना की गहराई, बहुत श्रेष्ठ भजन उन्होंने लिखे हैं जो हम अपने मंदिरों में नियमित रूप से गाते हैं। उसमें से एक मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारी पतित पावन हेतु तव अवतार मोसम पतित प्रभु न पाई बेहार। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करो हमें बड़ो दुखी। हाँ सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भोले पाई चैतन्य निताई। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इस तरह से बहुत सुंदर भजन लिखे हैं और उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं उनके भजन को स्टडी करके। आखिर में जब वो बहुत लंबी कहानी उनके बाद समय नहीं इतना, नरोत्तमदास ठाकुर जी जो आखिर में पद्मा नदी के पास गए तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों को मुझे जल अर्पण कीजिए मेरे ऊपर। जैसे ही वो जल अर्पण करने लगे उनका शरीर जो है पिघल कर नदी में प्रवाहित होने लगा। गुरु जी की आज्ञा थी तो शिष्य रोने लगे गुरु जी का शरीर समाप्त हो रहा है, लेकिन वो जल डालते रहे तो पूरी तरह से उनका शरीर पिघल के नदी में लीन हो गया पद्मा नदी। तो वहां के रज लेकर फिर उनकी समाधि बनाई गई। आज वृंदावन धाम में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि जहां पर है वहीं पर उनकी समाधि है जिसमें उनके पुष्प और वहां के मट्टी रखकर उनका समाधि है, क्योंकि शरीर तो रहा नहीं था। और एक मंदिर है हमारे सात मंदिरों के अंदर एक मंदिर है राधा गोकुलानंद मंदिर। उस गोकुलानंद मंदिर में नरोत्तम दास जी की द्वारा पूजित चैतन्य महाप्रभु का विग्रह रखा गया है और उसी जगह पर गोपी उद्धव मिलन संवाद स्थली के पास में उनका राधा ब्रज भवन का विग्रह भी है। बाकी तीन विग्रह जो है वो खेतुरी ग्राम में। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की खेतुरी ग्राम में सबसे पहले जो गौर पूर्णिमा का उत्सव हुआ था भक्ति रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है नरहरी सरकार चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा हुआ है उसके अंदर विस्तार में इस गौर पूर्णिमा उत्सव का वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु के जन्म का तिथि मनाया गया, सब भक्तों को बुलाया गया। नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया करदाह गांव से जो मायापुर के पास में है कलकत्ता के पास करदाह। वहां जो जानवा देवी आई उनके नेतृत्व में सभी कौड़िया वैष्णव जो श्रेष्ठ वैष्णव थे वो सब वहां पर प्रकट हुए और बहुत ही दिव्य कीर्तन हुआ। और इतना दिव्य कीर्तन हुआ उस समय कि उस कीर्तन में इतना प्रेम और भाव प्रकट हो गया भक्तों के हृदय से। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी भी उसमें नृत्य कर रहे थे। सभी लोगों के दिव्य भाव की वजह से उस कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रकट हो गए और सबके आंखों के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कीर्तन किया और कीर्तन समाप्त होकर वो अंतर्धान हुए। तो चैतन्य महाप्रभु विश्व में नहीं थे उस समय, अपनी लीलाओं को समाप्त करके वो धाम में जा चुके थे। ये कीर्तन में शक्ति होती है इसलिए हम आपको बार बार विनती करते रहते हैं पुकारो पुकारो। हाँ ये आपके लिए लाभदायक है इसलिए हम पुकारने की कोशिश विनती करते रहते हैं, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन ये गौलोक का सबसे बड़ा धन है जो हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अभी अगर किसी बंदर के हाथ में अगर बड़ा कोहिनूर हीरा दे देंगे तो क्या लगता है आपको क्या करेगा वो? इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा गेंद गेंद के रूप में खेलेगा, उसको वैल्यू नहीं उसकी। कोई किसी और को देंगे गांव वाले तो फिर वो कपड़ा सब धोने के लिए उसको साबुन की तरह इस्तेमाल करेंगे, बच्चा खेलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई बंदर और जानवर आएगा तो फिर वो खाने की कोशिश करेगा, खाने का पदार्थ लेने की कोशिश करेगा, खाऊंगा उसको। क्योंकि क्या है अज्ञान है उसके बारे में, पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है। हम भी उसी तरह से हैं अज्ञानी हैं। हरिनाम संकीर्तन हम बोलते हैं कथा में सुनते हैं कि अरे ये गौलोक का प्रेम धन है इससे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सकता है भगवान के लिए, ये हमें भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बना सकता है, गौलोक धाम में प्रवेश करा सकता है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये सब भाव की बात है। हृदय जब हृदय में भाव प्रकट होगा तो फिर ये हरिनाम संकीर्तन जो आपको आज इतना सामान्य लग रहा है पता चलेगा आपको कि ये आपको गौरव धाम में ले जाने के लिए शक्ति रखता है अपने पास। तो इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए इस कीर्तन में। और महाप्रभु चैतन्य ने वादा भी किया है कि जहां भी लोग हरिनाम संकीर्तन प्रेम से करते हैं, वहां मैं नित्यानंद प्रभु के साथ में प्रकट होता हूँ। क्योंकि हम लोग अशुद्ध हैं, इसलिए हम लोग हमारा उनको हमको उनका दर्शन नहीं होता है, लेकिन हमको विश्वास रखना चाहिए कि जहां पर कीर्तन हम प्रेम से करते हैं, प्रेम से करना चाहिए पहले, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। और कहा गया है कि इस विश्व में सब जगह पर मृत्यु का भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय है, सब जगह पर कष्ट है, अन्य जीवों द्वारा इस शब्द के प्रकृति के कोप द्वारा हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो नहीं तृप्त होती है, नहीं पूर्ण होती है, तो भी दुख होता है, अनंत प्रकार के कष्ट है इस दुनिया में, और कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है दुनिया में। पदम पदम यद विपदम न तेजाम, हर जगह पर हर कदम पर डर है, सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, मृत्यु को कभी प्राप्त हो सकते। अभी हम बैठे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं जवान हैं, कुछ सोच रहे हैं बूढ़े हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं मिडिल एज के हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं औरत हैं आदमी हैं, कुछ सोच रहे हैं हम हेल्दी हैं, कुछ सोच रहे हैं बीमार हैं, लेकिन हर अवस्था एक तत्पुरी क्या कहते हैं उसको टेम्पररी अवस्था है। क्योंकि किसी भी अवस्था में आप स्वस्थ है अस्वस्थ है, सुंदर है गरीब है अमीर है, हम बड़े हैं छोटे हैं, उम्र से जवान है बुढ़ापे के अवस्था में, किसी भी अवस्था में मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे अवस्था में कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और हेल्थ अपना बहुत अच्छा है लेकिन मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है, हाँ गलत पानी पीने से विष बाधा होकर हो सकती है, हवाई जहाज से गिरने से हो सकती है, ट्रेन के एक्सीडेंट में हो सकती है, जल में गिरने से हो सकती है। तब देखा ना आपने विमल कुंड में 16 साल का एक्सपर्ट तैरने वाला लड़का जो है गिर गया, उसके साथ मर गया, तो किस समय मृत्यु होगी इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमको केवल कर्तव्य करना चाहिए अपना शरीर को चलाने के लिए, बस जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए, बाकी सारा समय सारा ध्यान सारी शक्ति जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खर्च करने के लिए। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, द प्राइमरी बिजनेस इज टू रियलाइज कृष्णा, टू सर्व कृष्णा एंड टू गो बैक टू मी। ये बहाना है कैंप का, लोगों के आंखों को ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, धाम में आते हैं, धाम का संग करते हैं, धाम की कथा सुनते हैं, धाम का दर्शन करते हैं, और हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, भजन के अंदर रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हरिनाम के अंदर आसक्ति पैदा करने की कोशिश करते हैं, भक्तों की सेवा करने का कोशिश करते हैं, प्रेमी प्रणयी भक्तों के संग में धाम का दर्शन धाम का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। तो इस सब चक्कर में हर समय हम लोग किसी न किसी विवंचना में चिंता में लगे रहते हैं, कभी परिवार की चिंता है, कभी लोन की चिंता है, कभी हेल्थ की चिंता है, कभी कुछ और घर में कुछ झगड़े चल रहे हैं उसकी चिंता है, कोई पड़ोसी का झगड़ा है, हर बार कुछ ना कुछ मन में एक अंकुश लगा रहता है, कॉन्स्टेंटली वी आर हॉन्टेड विथ समथिंग और अदर, सम अदर पेन इज देयर ऑलवेज। तो कीर्तन एक ऐसा स्थान है जहां पर भक्त भगवान के प्रेम से कीर्तन करते हैं, वो जगह सभी प्रकार के विकारों से सभी चिंताओं से सभी कष्टों से पीड़ाओं से मुक्त रहता है, क्योंकि साक्षात गौरव धाम उस जगह प्रकट होता है जहां पर हरिनाम संकीर्तन होता है। इस बात पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और जितना हम उस संकीर्तन में अपने आप को हृदय से अर्पण करेंगे, भावना ऐसा नहीं कोई धक्का लगा रहा है तो आपको इच्छा नहीं है जाने तो मुझे बैठना है क्या है, पर मुझे धक्का दे रहे हैं क्या, बोल रहे बोलो बोलो थक गया हूं थोड़ा सा बैठूंगा दुख खाऊंगा, ऐसे नहीं। हृदय से जब हम मन से बुद्धि से चित्त से और अपनी आत्मा से शरीर से बिना संकोच से बिना लज्जा से, अरे कौन क्या बोलेगा, मैं तो डॉक्टर हूँ कौन बोलेगा, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ कौन बोलेगा, मैं धनवान हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ मुझे कैसा नाचूंगा इनके लोगों के बीच में, तो मेरे लायके के लोग नहीं है सब बड़े, मैं बड़ा हूँ बहुत ऐसा लगेगा आपको। तो अहंकार को छोड़ के संकोच को छोड़ के लज्जा को छोड़ के हर प्रकार से हृदय से जब हम इस कीर्तन में भाग लेंगे जितनी हमारी क्षमता है उतनी क्षमता में, तो हमारा सारा जो त्रिगुणों का प्रभाव है हमारे ऊपर खत्म हो जाएगा और साक्षात गौरव वृंदावन का अनुभव करेंगे आप। कीर्तन जब होता है तब कीर्तन के अंदर कोई दुखी नहीं होता है, कभी देखा आपने कि कीर्तन के अंदर कोई नाच रहा है और गा रहा है और वो दुखी है, ऐसा होता है कभी? उल्टा दुखी आदमी कीर्तन में भाग लेने सुखी होकर बाहर निकलता है और हंसने लगता है, कीर्तन के वजह बहुत चिंतित था वो पीड़ित था, कीर्तन खत्म हो गया तो बड़ा मुस्कान कान तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि वो गौलोक धाम के अस्तित्व का अनुभव करता है कुछ समय के लिए करो। भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के संग का अनुभव करता है, भले दिखाई न पड़े। हाँ, इसलिए मृदंग वाद्य सुनिते होइलो आनंद, ये वाद्य सुनते हैं हम मृदंग कीर्तन में, मृदंग करताल झांझ और भक्तों का मधुर ध्वनि सुनते हैं, प्रेम से पुकारी हुई, उसमें जब हम भाग लेते हैं हृदय से अपने आप को, तो हमें वो दिव्य अनुभव होता है। तो ऐसे दिव्य अनुभव उत्पन्न करने के लिए नरोत्तमदास ठाकुर ने बहुत श्रेष्ठ भक्तों को बुलाया था, और सभी उच्च भक्तों ने मिलकर अपनी उच्च भावना से समर्पित किया था अपने आप को कीर्तन में, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। प्रकट तो थे ही वो, प्रकट तो होते रहते हैं हर कीर्तन में, लेकिन उन्होंने दर्शन भी सबको दिया, सबकी नजरों के लिए, और सबका उत्सव धन्य कर दिया अपने आविर्भाव से। जो आविर्भाव उनका जन्म के दिन हुआ था उसको बनाने के लिए उन्होंने कीर्तन किया था, और स्वयं प्रकट होकर उन्हें आविर्भाव को संपूर्ण कर दिया, परिपूर्ण कर दिया। नरोत्तमदास ठाकुर की माखुर की महिमा तो अगाध है। हम आज के दिन माघ पूर्णिमा का दिन उनका उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनकी स्मृति को, उनकी दिव्यता को, उनकी भक्ति को, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके अंदर जो अथाह सागर की तरह भक्ति है, प्रेम है, उसका एक कण भी हमें प्राप्त हो जाए। हाँ, लोकनाथ जी महाराज जब उनको मना करते थे तो ये भी कारण बोलते थे, अरे मैं तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में व्याकुल हूँ, और आप तो इतने महान हो कि आपको महाप्रभु स्वयं दर्शन देके आलिंगन दिए हुए हैं, दूसरी बार स्वप्न में आए हुए हैं, तो मैं आपके शिष्य बनने योग्य हूँ, आप मेरे गुरु बनने योग्य, जिनके विरह में मैं व्याकुल हूँ वो आपको दर्शन दे चुके, तो मैं कैसे आपका गुरु बन सकता हूँ। इतने महान थे चैतन्य नरोत्तमदास ठाकुर जी, आकर महाप्रभु जी ने उनको कृपा दिया। ऐसे कभी किसी अयोग्य व्यक्ति के लिए नहीं होता है, जो व्यक्ति पात्र है उसके लिए ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया था कि कोई भी अच्छा काम करना हो भगवान की सेवा में, तो आप माघ पूर्णिमा जो है अच्छा दिन है। तो हमारे एक कैंप कभी योगा योग से माघ पूर्णिमा का दिन हमने यज्ञ किया था, तो महाराज ने मुझे बताया था कि ये जो दिन है बहुत पवित्र दिन है, और इसी दिन में हमें हरिधाम के अंदर अधिक रुचि लेने के लिए, अधिक दिल से तन से मन से ध्यान से जब करने का प्रण लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की सेवा मिले, भक्ति मिले और कृपा मिले। सेवा ही तो हमारा धन है, और सेवा के अलावा और क्या है। गुरुजी भी जब स्वीकार नहीं कर रहे थे तो उन्होंने उनकी सेवा ढूंढ के निकाली, और सेवा से उनके हृदय को उन्होंने प्रभावित किया, और उनके सेवा भाव को देखकर गुरु महाराज जो इतने विरक्त थे, शिष्य लेने के भाव में नहीं थे, उनको शिष्य स्वीकार करना पड़ा, उनको इतना उन्होंने सेवा भाव प्रकट किया। तो सेवा भाव जो है हमारा वैक्सीन है, इस दुनिया के कष्टों से मुक्त होने का एक वैक्सीन है, टीका बोलते हैं, टीका हिंदी में, मराठी में लस बोलते हैं। वो क्या करता है, आने वाले बीमारी से हमको बचाता है, बीमारी वाले माहौल में भी हम रहेंगे तो भी वो टीका का दवा शरीर में होने से वो बीमारी की जो है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता है। तो हमारी कौन सी बीमारी है, हम सब लोग भवरोग से बीमार हैं, सब लोगों को भौतिक इच्छा, शरीर का भोग, इंद्रियों का भोग, भौतिक दुनिया का भोग लेने की इच्छा है, इस रोग से हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, शरीर के बंधन में अटके हुए हैं। तो संत को हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा जब तक ऑन है तब तक हम भवरोग से मुक्त हैं, भगवान की सेवा छूट गई तुरंत सब विकार ला राग लोभ अहंकार काम क्रोध मद मोह सब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हम लोग उसके प्रभाव में पागलों की तरह बर्ताव करते हैं। तो आज हम सब लोग नरोत्तमदास ठाकुर को प्रार्थना करेंगे कि उनको हमारी हम पर कृपा करें, थोड़ा सा सेवा भाव उनको ही दे दें, और इस भवरोग से हमें मुक्त करें, भगवान की सेवा में रखकर हमेशा हमें भवरोग के प्रभाव से मुक्त रखें। हरे कृष्णा। नरोत्तमदास ठाकुर महाशय की जय। आज का माघ पूर्णिमा का दिन और भी एक तरह से बहुत हमारे लिए शुभदायी है, कल्याणकारी, हमारे लिए बहुत भाग्य का दिन है, क्योंकि हम सब लोग पहली बार चंपक लता जी के इस गांव में आए हैं। एटलीस्ट मैंने बहुत साल से इच्छा थी गाँव बनाने की, और मैं हर साल सोचता था कैसे जाएंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे। इस बार हमने तुलसी बाबा को पकड़ ही लिया, चलो हमारे साथ और हमको करेला गांव दिखा दो। तो ये अचानक प्लान बन गया, हमारे लिस्ट में था, हमने लिखा था क्वेरी, वी विल ट्राई टू सी एंड रिसर्च वेयर दिस प्लेस इज। वैसे तो रिसर्च तो होता है, जो चीज नहीं होती उनका होता रिसर्च, ये तो चीज वही थी, हम अज्ञान में थे, हमको पता नहीं था। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तभी ही ये प्रवेश मिलता है। ये मत समझना कि हम अपने बस में अपने गाड़ी से अपना खर्च करके यहाँ तक आए हैं, नहीं, भगवान की जब इच्छा होगी, जब उनका निमंत्रण होगा तो ही हमारा प्लान सफल होता है। जिस घर में, जिस घर के जिस कोने में भगवान को हम बुलाना है तो ही हम पहुंच सकते हैं वहां पर। नहीं तो उस दिन हमारा आशेश्वर महादेव जाने का प्लान भी था, लेकिन उस दिन वो सफल नहीं हुआ, आगे भी हो सकता है ऐसे। तो समझने की बात यह है कि ठाकुर जी के घर में जब हम आते हैं, जैसे कि श्री वृंदावन धाम ब्रजभूमि ठाकुर जी का घर है, बहुत विशाल घर है, अनंत घर है, अनंत वन है, अनंत लीलाएं हुई है, लेकिन क्या क्या प्रकट करना है आपके लिए, क्या क्या दिखाना है, उनके हाथ में है, जो उनकी कृपा होगी वैसे दिखाते। आज अचानक इस गांव में आने का भाग्य मिला है, जो आपको इसका जरा इतिहास बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरे भगवान के लीला के अंदर इसका स्थान क्या है। हम सब जानते हैं कि राजा रानी का गांव बरसाना है ना, और राजा रानी बरसाना में विराजमान है भानुगढ़ पे। आपको कल के दिन सब लोगों को, जो भी यात्रा में आ सकते हैं उनको हम कल बरसाने का दर्शन कराएंगे। तो राजा रानी बरसाने में रहती है, तो वृषभानुपूर्ण या वरस्यानु या बृहस्यानु या बहुत सारे नाम हैं उसके, ब्रह्मा जी जहाँ पर पर्वत बनते विराजमान हैं, और उस वो एक कमल का जो है बीच का हिस्सा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल, कमल का जो हृदय होता है ना बीच में, जहाँ पर जाकर मधु उसका मधु ग्रहण करता है, और उसके बाद में पंखुड़ियाँ होती हैं, कुछ पंखुड़ियाँ पहले राउंड में होती है, कुछ पंखुड़ियाँ उसके बाद में होते हैं, कुछ पंखुड़ियाँ उसके बाद में होती हैं, और सबसे लास्ट में फिर बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं। जैसे वो उसका सर्कल जो है बढ़ते जाता है तो पंखुड़ियाँ भी बढ़ती जाती है, तो वैसे ही सबसे बीच बरसाना है, और उसके बाजू में आठ गांव हैं कमल की पंखुड़ियों की तरह, तो एक एक कमल की पंखुड़ी के गांव की तरह है, और उसमें एक एक सखी का निवास है। भगवान की आठ प्रमुख सखियां हैं, उनका नाम है, सबसे प्रधान सखी जो है वो ललिता जी हैं, उनके भी गांव में हम आ जाएंगे। दूसरी प्रधान सखी है विशाखा देवी, उनके भी गांव आ जाएंगे हम। आज के दिन में तीन सखियों के गांव में जाने का हमारा प्लानिंग है, एक तो सफल हो गया है उनकी कृपा से, तो एक है ललिता जी, एक है विशाखा जी। हाँ, अगर आपको इनके नामों को याद रखना है, मैं आपका भी सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और लिखिए, अगर आपको लिखना है। राधा और कृष्ण बीच में आपके खड़े, आप मन में विचार कीजिए, राधा और कृष्ण है, कृष्ण के साइड में ललिता जी खड़ी और राधा के साइड में विशाखा जी खड़ी है। ललिता जी का जो नाम है उसके एंड में क्या आता है, ता, तो ललिता जी के बाजू में चंपक लता खड़ी है, ललिता और चंपक लता। विशाखा का नाम जो है वो एंड होता है खा से, तो विशाखा के बाजू में इंदुलेखा खड़ी है, विशाखा इंदुलेखा, तो इंदुलेखा के बाजू में जो राधा रानी का साइड है उधर दो देवियां हैं, रंग देवी और सुदेवी। जब हम कल गए थे ना उधर कामेवन में, तो हमने आपको बस से दिखाया था, एक सफेद मंदिर था, सुनहरा स्वर्णपुर, वो सुदेवी का मंदिर है, और उसकी जुड़वा बहन दोनों रंग देवी और सुदेवी, और इस तरफ ललिता चंपकलता के बाजू में तुंग विद्या और चित्रा सखी, चित्रा सखी और तुंग विद्या, लास्ट में तुंग विद्या है, और तुंग विद्या जी देवी जो है वो उनका गांव डभारा है, और चित्रा सखी का गांव जो है वो चिकसोली है, चिकित्सपुर। डभारा गांव जो है वो तुंग विद्या देवी का है, और रंगपुर रंग देवी का है ना,
रांकोली,
रांकोली वही रंगपुर उसका वो नाम, लोकल नाम और संस्कृत नाम। तो हम लोग अभी चंपकलता के गांव में बैठे हैं, जिसका नाम है करहपुर या करहबन, या लोकल नाम जो है करहला। तो इनका राधा रानी का जो गोत्र है वो देवराज गोत्र है, और इनके जो वृषभानु महाराज पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम महीभानु था, और वृषभानु के माता का नाम था सुखदा, और महीभानु के जो पिताजी थे, जो वृषभानु महाराज के पर बाबा थे, पेट ग्रैंड फादर, कंज भानु उनका नाम था। तो कंज भानु देवराज गोत्र के थे, उनका पुत्र का नाम महीभानु पत्नी का नाम सुखदा, उनका पुत्र था वृषभानु महाराज। एक पुत्र नहीं थे, 9 पुत्र थे उनके, पहले 4, बीच में वृषभानु महाराज, बाद में 4, यानी कि 4 ताऊ जी राजा रानी के, एक पिताजी और 4 चाचा जी। वृषभानु महाराज को 2 बहनें थी, भानुमती और भानुपुत्रा। और वृषभानु महाराज का विवाह हुआ कीर्तिदा से, कीर्तिदा इंदुसेन और बुखाराई, बुखारा देवी इनकी कन्या थी। जो बुखारा देवी है उनका गांव जो है वो राजापुर के पास में 1 किलोमीटर के अंदर बसंती गांव के आसपास में बुखारा गांव है, जहाँ पर मुखराई यानी कि बुखारा देवी वहां रहती थी। और उनके कन्या का नाम है कीर्तिदा। उनको 3 बहनें थी, 4 बहनें थी, भद्रकीर्ति, महाकीर्ति, चंद्रकीर्ति, और 3 बहनें थी, भद्रकीर्ति, महाकीर्ति और चंद्रकीर्ति। और मुखारा देवी की बहन थी जिनका नाम था कीर्तिमती, जो उनकी राजा रानी की मौसी थी। ये उनका परिवार का परिचय होना चाहिए ना, उनके घर आए तो आप बोलेंगे ना कौन कौन नहीं करनी, तो बता रहा हूँ आपको। तो वृषभानु महाराज का जब कीर्ति माता से विवाह हुआ तो उनके सबसे पहले उनको सुदामा जी प्राप्त हुए पुत्र के रूप में। सुदामा जी भगवान के बड़े प्रिय सखा है। उनका विवाह रंभा जी से हुआ था, रंभा गोपी से। और उसके बाद राजा रानी का जन्म हुआ रावल में, किसी कल्प में रावल में हुआ, किसी कल्प में वृषभानुकर में हुआ। वो आपको कल लेके जाएंगे, भानुकर, वृषभानुकर महाराज जी का सरोवर है। और तीसरी जो कन्या हुई उनको कीर्ति मैया को वृषभानु महाराज, उनका नाम है अनंग मंजरी। ये कौन थी मुझे बताया ना कथा में आपको, बलदेव जी महाराज, बलराम जी जो है वो गोपी बने राजा रानी के माधुर्य लीला में सहभाग देने के लिए। तो इनका परिवार का परिचय है। और जो 4 ताऊ जी हैं राजा रानी के, उनका नाम है महाबानु जी, जिनका विवाह चंपा देवी से हुआ, और जिनकी कन्या का नाम है ललिता देवी। उनका गांव कहाँ है, ऊंचा गांव, ऊंचा ग्राम, यहाँ पर भी हम आ जाएंगे। दूसरा दूसरे भाई इनका नाम है सत्य भानु जी, उनका विवाह नवजवनी देवी से हुआ, उनकी कन्या का नाम है विशाखा देवी, जो अंजनपुर में रहती है, अंजन गांव, उसको आज आंजनों कहते हैं। तीसरे भाई गुणभानु, ये हमारे चंपकदत्ता देवी के पिताजी। गुणभानु जी का विवाह हुआ सविता देवी से, और उनको कन्या हुई चंपकलता देवी, जो करहपुर, करहला, करहबर में रहती है। और चौथे भाई का नाम धर्मभानु, जिनका विवाह हुआ सुभगा देवी से, और इनका कन्या का नाम चित्रा देवी है, चिकित्सापुर। इस चिकित्सापुर में हम लोग कल दोपहर को और कल शाम को प्रसाद पाएंगे, महाप्रसाद चित्रा देवी का। इस प्रकार से 4-5 अष्टसखियों में देवियों का हमारा दर्शन हो जाएगा। इसके बीच में वृषभानु महाराज है, जिनका विवाह कीर्ति मैया से हुआ, राजा रानी सुदामा अनंग मंजरी का जन्म हुआ। उसके बाद में छोटे भाई जो है रुचि भानु, ये तुंग विद्या के पिताजी हैं, इनका गांव है कमई, यानी कि कामना वन। उसके बाद में वर भानु जी हैं, जिनका विवाह रमा जी से हुआ, और उनको कन्या हुई इंदुलेखा, जो रंकपुर में रहती है, रंकपुर वन, रामपोली। उसके बाद सुभानु जी, सुभानु इनका विवाह मालिका देवी से हुआ, और इनकी कन्या हुई डबारा, डबारा गांव में रंगदेवी के तुंग विद्या, डबारा में तुंग विद्या ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और 8वां जो भाई है 9वां सती भानु, उनका बुद्धिमती देवी से विवाह हुआ, और जो सुदेवी स्वर्णपुर में रहती है वो उनकी कन्या है। इंदुलेखा का गांव जो है वो रामपोली, तुंग विद्या का डबारा हो गया ना, तुंग विद्या का डबारा, तो उसको भगवान की कई प्रकार की सखियां हैं। खाली उनका आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे जो अपने आप को नम्र मानती है सबसे नीचे, वो है किंकरी। किंकरी जैसा अर्थ पता है आपको, किम कर रहा, क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यही प्रश्न करते हैं। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्या सेवा करें, दैट इज द ओनली क्वेश्चन वी कैन आस्क, व्हाट इज द बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क, हाउ कैन आई सर्व यू नाउ इन द गिवन कंडीशन इन द बेस्ट वे। आज की स्थिति में सबसे अच्छे तरीके से मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसे हमको भगवान पूछना है बस। ये अगर हम पूछेंगे उसका जवाब जो मिलेगा उसमें अगर हम अमल करेंगे तो हमारे जीवन में कोई माया का प्रभाव नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, हमेशा हम आनंद में रहेंगे। और इस आनंद में रहते हुए जीवन के अंत में किम कर रहा पूछते पूछते गौरव को जवाब पहुंच जाएंगे। द बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क, क्या बोला मैंने, किम कर रहा, क्या करूं। उसके बाद दासी, उसके बाद मंजरी, सहचरी, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ सखी। करोड़ों करोड़ों गोपियां थी, उसके अंदर 16,000 गोपियां विशेष गोपियां भगवान को अति प्रिय हैं, उसके अंदर 108 गोपियां भगवान को अति प्रिय हैं, उसके अंदर 8 गोपियां भगवान को अति प्रिय हैं, उनका नाम आपको बताया। उन 8 गोपियों के ऊपर 2 गोपियां हैं, नाम मैंने आपको बताया नहीं है, एक है चंद्रावली और एक है राधा रानी। चंद्रावली जो है वो रिठोरा गांव में रहती, ऐसा होता ना कि राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, तो राइट विंग गोपी चंद्रावली, उसका एक बड़ा यूथ है गोपियों का, और लेफ्ट विंग गोपी राधा रानी, उनका भी एक बड़ा यूथ है गोपियों का, करोड़ों गोपियों का, और वो कृष्ण के प्रेम प्राप्ति करने के लिए स्पर्धा करते रहती है। ये कोई ईर्ष्या से संबंधित स्पर्धा नहीं है, स्पर्धा नहीं है, दिस इज नॉट कंपटीशन बेस्ड ऑन एनवी, ये प्रेम की स्पर्धा है, एक दूसरे का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए किए हुए स्पर्धा जो होती है वैसी स्पर्धा ये लोग करते हैं। चंद्रावली के नाम से राधा रानी चिढ़ जाती है और राधा के नाम से चंद्रावली चिढ़ जाती है, लेकिन ये चिढ़ना जो है ये द्वेष का प्रतीक नहीं है। आपको शायद पता मतलब जानकर खुशी होगी कि चंद्रावली राधा रानी का ही स्वरूप है, राधा रानी ही लीलाओं को बढ़ाने के लिए, लीला के अंदर प्रेम को बढ़ाने के लिए स्वयं विस्तारित होती है चंद्रावली देवी के रूप में, और विरोधाभास में लीला करती है, ताकि कंपटीशन में कभी भी होता है ना, जो हमारा पति है उसके पीछे 4 औरतें लगी हुई हैं, तो पति जो है बड़े प्रेम से प्रेम करेगा और ज्यादा सेवा करेगी उनकी, हमारे पर मेरा मन लगा रही है, कोई कंपटीशन नहीं तो क्या ठीक है, हमारे ही है, क्या इसमें कलर और सुखी रोटी खा, लेकिन जब कंपटीशन होती है तो प्रेम बढ़ता है ना, क्योंकि 2 अगर विद्यार्थी हैं और वो फर्स्ट रैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं तो दोनों ज्यादा पढ़ाई करेंगे कम पढ़ाई करेंगे, अगर फर्स्ट रैंकर है उसका 10% कम मार्क्स सेकंड रैंकर को है तो फर्स्ट रैंकर आराम से हो जाएगा, फिर क्या अभी मैं थोड़ा कम मार्क्स मिलेगा तो भी मैं फर्स्ट ही आऊंगा, लेकिन फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर के अंदर एक एक मार्क का अंतर रहेगा तो फिर वो कौन ऊपर कौन नीचे, इसके प्रयास में बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तो अच्छा है कि बुरा है, तो प्रतिस्पर्धा जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। हम दुनिया में कैसी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम ऐसी स्पर्धा करेंगे कि हमारी कोशिश यह रहेगी कि आपके छाती पर पांव रखे हम आगे जाएंगे, ये हमारे दुनिया में प्रतिस्पर्धा ऐसी होती है, हम आपको नष्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन दिव्य भगवान के दुनिया में स्पर्धा कैसी होती है कि हम भी बढ़ेंगे और आप भी बढ़िए। और एक बार महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि प्रतिस्पर्धा कैसे होनी चाहिए, मुझे याद आ रहा है, उदाहरण बताना बहुत जरूरी है। हमारे मंदिर में दिसंबर में पुस्तक वितरण का होता है मैराथन, और सभी भक्त लोग सभी मंदिरों में जितने विश्व में मंदिर है सब पुस्तक वितरण के लिए बाहर निकलते हैं। एक महीना भर क्रिसमस के वातावरण में सब लोग बहुत खरीदारी करने के मूड में रहते हैं, तो इस समय का लाभ लेकर पूरे विश्व में भारत भर में भी दिसंबर में किताब वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण सब, उसका रिकॉर्ड भी होता है, और उस रिकॉर्ड के अनुसार फिर एंड में वर्ल्ड में डिक्लेयर होता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुस्तक वितरण किसने किया, नंबर 1 किसने प्राप्त किया, नंबर 2 किसने प्राप्त किया। तो एक स्कॉटलैंड का मंदिर था हमारा, तो स्कॉटलैंड का मंदिर जो था उसमें इतने भक्त थे, अच्छे अच्छे भक्त थे, एक एक भक्त जो था, जैसे कि स्कॉटलैंड मंदिर जो था वो हमेशा नंबर 1 आया करता था, और उसके अंदर नंबर 2 जो था उसके बहुत नीचे किसी मंदिर का रिकॉर्ड स्कोर था, और स्कॉटलैंड मंदिर का एक एक भक्त जो है वर्ल्ड के एक एक मंदिर के बराबर पुस्तक वितरण करता था, वो कंपटीशन है ही नहीं। तो इसको ऑन वर्ल्ड जीबीसी गुरु ने उनको बताया कि आप अभी ऐसा करो, ये कंपटीशन जो होती है उसके अंदर आप भाग मत लो, क्योंकि आपका एक एक भक्त जो है एक एक मंदिर के पूरे सारे भक्तों के साथ में जो मिलकर वो पुस्तक वितरण का स्कोर होता है वो एक भक्त कर देता है। तो उन्होंने बड़े ही ग्रेसफुली उस पता से वो बाहर चले गए और अपना काम करते रहे, और कंपटीशन के अंदर बाकी सब मंदिर लगे रहे। सरगा गोपीनाथ मंदिर में हमारा मंदिर है, उसमें गुरु महाराज को सब भक्तों ने कहा कि हम अभी इस साल में 1,00,000 भगवद गीता वितरण करेंगे। और 1,00,000 का तो कोई अभी तक किसने किया नहीं था उस समय तक। स्कॉटलैंड मंदिर तो कई आगे कर चुके थे लेकिन बाकी किसी मंदिर ने नहीं किया था। तो 1,00,000 करना मतलब नंबर 1 आना है ना। द पर्पस ऑफ टेलिंग गुरुदेव कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट 1,00,000 भगवद गीता, उसके अंडरलाइन में क्या था कि हम लोग फर्स्ट आएंगे। बोल रहे हैं ना, मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोग 1,00,000 गीता वितरण करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन अंदर उसकी भावना क्या थी, हम लोग फर्स्ट आएंगे। तो गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जरूर 1,00,000 गीता वितरण करो लेकिन आपका नंबर सबसे लास्ट आना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि आप 1,00,000 तो करेंगे लेकिन सब आपसे अधिक करेंगे और आप नंबर लास्ट में आएंगे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो होते ना कॉम्पिटिशन, उसका भाव ये रहता है तो मैं अपना बेस्ट करूंगा लेकिन चाहूंगा कि मैं सबसे लास्ट रहूंगा। गोपी भरतुर पद कमलयोर दास 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 अनुदास, मैं सबसे बेस्ट मेरी सेवा जो है भगवान के लिए करूंगा लेकिन चाहूंगा ये कि सब लोगों की सेवा मेरे से अधिक हो और मैं सबसे नीचे रहूं। जो गिलहरी है वो भी कोशिश करे कि मैं मेरा बेस्ट तरीके से राम जी के सेतु बंध में मैं सेवा करूंगी। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं भी मेरा बेस्ट शक्ति जो है वो लगाकर सबसे बड़े चट्टानों को उठाकर मैं राम जी के सेतु में डालूंगा। तो भगवान बता रहे हैं रामचंद्र जी कि वो जो गिलहरी है वो भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो भी अपना 100% दिलो जान से अपनी सेवा दे रही है। हनुमान जी आप भी श्रेष्ठ हो क्योंकि आप भी अपने 100% सेवा दे रहे हो। मात्रा जो प्रकट हो रही है बाहर बाहर दृष्टि से, मात्रा मतलब क्या, इतना बड़ा पत्थर लाया ये मात्रा होगी ना, वो बहुत बड़ा है गिलहरी के कुछ रेती के दाने के सामने, लेकिन भगवान की नजरों में वो गिलहरी भी उसी दर्जे की है जितने हनुमान जी है। बता रहे हैं उनको कि फर्क नहीं करना चाहिए। उसी तरह से ये स्पर्धा जो है हमारे जीवन में, ये स्पर्धा हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। धन के लिए स्पर्धा, प्रमोशन के लिए स्पर्धा करते हैं हम लोग, अपने कलीग्स को दबाते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं और सीनियर लोगों का मन बहला देते हैं और अपना फेवर ले लेते हैं, वसीला लगाते हैं, ये सब जो है वो घातक स्पर्धा है। सही स्पर्धा वो है कि हम इतना कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की कि बहुत मेहनत करेंगे लेकिन आखिर में मेरी ये इच्छा रहेगी कि मैं आपके नीचे रहूं आप मेरे ऊपर रहें। और वो जो ऊपर रहेगा वो भी सोचेगा कि मैं कोशिश करूंगा पूरी लेकिन मैं आपके नीचे रहूंगा आप मेरे ऊपर रहेंगे, मैं मेरा बेस्ट करूंगा, लास्ट ईयर जितना किया था उससे भी अधिक करूंगा लेकिन मेरी ये तमन्ना रहेगी कि मेरा जितना रिकॉर्ड है उसके आगे आपका रिकॉर्ड रहे और मैं आपके नीचे रहूं। मुझे महाराज जी ने बताया तो इसका सार ये था, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदिनं कीर्तनीय सदाहरि। खुद के लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं करना, दूसरों को सदैव सम्मान देना, हर व्यक्ति को, हर छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो उसको सम्मान देना, तृण के समान नम्र हो जाना, उसके भी अधिक नम्र हो जाना। एक वृक्ष जो है, देखो आप, हम लोग छाया में क्यों बैठे हैं, हमको धूप सहन नहीं होती इसलिए हम लोग वृक्ष की छाया में बैठे हैं, लेकिन छाया कब पैदा होती है, छाया तब पैदा होती है जब वृक्ष धूप जो गर्मी की धूप जो है वो खुद सहन करेगा ना, तभी आपको छाया मिलेगी। वो धूप को रोकेगा, अपने आप सहन करेगा और आपको छाया में रखेगा। जब हाथ ऐसा आता है कांख के ऊपर तो हाथ का ये हिस्सा जो है वो धूप सहेगा पर आपकी आंखों में छाया देगा। तो छाया अपने आप उत्पन्न नहीं होती, कोई व्यक्ति जब गर्मी सहन करेगा धूप तब जाके छाया उत्पन्न होगी। ये सहनशीलता है। सहनशीलता किस लिए है कि मैं कुछ सहन करूंगा कष्ट लेकिन दूसरों को सुख दूंगा, शांति दूंगा, आनंद दूंगा, उसकी सेवा करूंगा। और जब बर्फ में ये पेड़ रहते हैं तो क्या करते हैं, अपनी शाखा जो है वो तोड़ के देते हैं, उसको हम जला देते हैं और अग्नि उत्पन्न करते हैं, खुद वो बर्फ की सर्दी में तड़पते रहते हैं लेकिन अपने शरीर का हिस्सा जला देते हैं हम लोगों को उठा देने के लिए, अपने आप को अर्पण कर देते हैं, निछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं दूसरों को उठता देने के लिए, चीज देने के लिए। और क्या अपेक्षा करते हैं, तरोर एव सहिष्णुना, तरु मतलब पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसी भावना में हम निरपेक्ष हो सकते हैं, आदर की भावना से मुक्त होते हैं, हमें आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, इससे मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी भावना रहेगी हमारी नम्रता की, सहनशीलता की और मान देने की और खुद के लिए मान की अपेक्षा न करने की। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इसी अवस्था में निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन हो सकता है। अगर इसमें मान बीच में आएगा, नम्रता कम होगी, अहंकार बढ़ेगा, सहनशीलता कम होगी, भोगवाद बढ़ेगा, तो कीर्तन जो हमारा है, नाम जप जो है, वो खंडित हो जाएगा। और बीच बीच में माया, बीच में जप, बीच में माया, बीच में जप। और भागवत में क्या लिखा है, अहै तुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति कैसे होनी चाहिए, अहै तुकी, मुझे हेतु होना नहीं चाहिए कि मुझे ये मिलेगा, मुझे कोई सम्मान देंगे, मुझे माला पहनाएंगे, दंडवत करेंगे मेरे लिए, मेरी पूजा करेंगे, मेरा गौरवा करेंगे, गौरव करेंगे, सब जगह जाके मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, मेरा नाम होगा भक्ति हो ये दुनिया में, कोई अपेक्षा नहीं होगी। और अप्रतिहता मतलब इसमें कोई बाधा नहीं होगी, आज चार घंटा किया तो कल एक घंटा किया, कल छह घंटा किया तो आज चार घंटा किया, बाधा आ गया बीच में, गैप नहीं होना चाहिए। वो आत्मा सुख प्रसिद्ध थी, तब आत्मा की प्रगति जो है बहुत सुंदर तरीके से होती है, और भगवान के चरणों में वो भजन वो कीर्तन जो है अर्पण हो सकता है, भगवान को स्वीकार करते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये सब मैंने क्यों बताया, चंद्रावली के विषय में बताया। चंद्रावली राइट में गोपी जरूर है, लेकिन उनका उद्देश्य यह है कि मैं ऐसे कार्य करूंगी कि राधा का और कृष्ण के ऊपर और कृष्ण का राधा के ऊपर प्रेम बढ़ेगी। राधा ने ऐसा कार्य करेगी कि चंद्रावली के ऊपर भगवान का दिल आए और वो भी उन पर भी प्रेम करेगी। वो दोनों स्पर्धा करती रहती हैं, हृदय में प्रेम पड़ता रहे। तो सखी जो है इसका कुछ उदाहरण है, कुसुमिका, विंध्या, नवधनिष्ठा, ये बहुत उनकी लीलाएं हैं, गोविंद लीला अमृत, आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, इस बड़े बड़े ग्रंथों में उनका लीलाओं का वर्णन आता है। और नित्य सखी में कस्तूरी मंजरी जो लोकनाथ गोस्वामी स्वयं बने हुए हैं, कस्तूरी मंजरी का अवतार लोकनाथ गोस्वामी है, और मणि मंजरी, और प्राण सखी में शशिमुखी सखी, बसंती सखी, लासिका सखी, और प्रिय सखी में माधवी, मालती, मंजुकेशी, कुरंगाक्षी, ये सखियाँ हैं। और परम श्रेष्ठ सखी कौन है, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, चित्रलेखा, तुम्ह विद्या, रंगदेवी, सुदेव, ये आठ सखियाँ भगवान को परम श्रेष्ठ सखी के रूप में भगवान के प्रिय हैं। तभी आपको थोड़ा सा वर्णन चंपकलता देवी का करेंगे, जिसके स्थान पर हम बैठे हैं। तो चंपकलता जी गुण भानु और सविता देवी की कन्या है, इनका गोत्र है सुताख्य, सुताख्य गोत्र, भाद्रपद महीने के शुक्ल अष्टमी यानी कि राधा अष्टमी के दिन ही इनका जन्म हुआ है, उसी दिन। कुछ कुछ ग्रंथ में लिखा है सप्तमी का, जहां मैंने पढ़ाया उसमें लिखा था भाद्रपद महीने की शुक्ल अष्टमी में इनका जन्म हुआ था, और बाकी सखियों का जन्म भी इसी 15 दिन के अंदर हुआ था। भाद्रपद महीना जो है वो जब गणपति आते हैं ना, जन्माष्टमी होती है, फिर भाद्रपद शुरू होता है, उसके चतुर्थी में गणेश जी आते हैं, तो उस महीने के तृतीया में तुंगे विद्या जी का जन्म होता है, षष्ठी में ललिता जी का जन्म होता है, उसको कहते हैं ललिता षष्ठी, ललिता छठ कहते हैं, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी में। अष्टमी के दिन राधा रानी, विशाखा देवी और चंपकलता देवी, तीन देवियों का जन्म अष्टमी के दिन होता है। दशमी के दिन चित्रलेखा, चित्रा सखी का जन्म होता है, और एकादशी में इंदुलेखा का जन्म होता है, और भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा के दिन, मतलब क्या हुआ, अनंत चतुर्दशी के अगले दिन रंग देवी सुदेवी का जन्म, आठों सखियां जो है इसी पक्ष में जन्म होता है। तो चंपकलता जी जो है इनका वर्ण जो है वो चंपा के फूल की तरह है, और कैसा होता है, पीले रंग का सुंदर रंग होता है। हर एक सभ्य सखी का जो रंग है शरीर का वो अलग अलग है, अपने भाव से भगवान की सेवा करते हैं, वो नीला वस्त्र प्रदान करते हैं। एक पक्षी है नीलकंठ नाम का, यहाँ पर तो दर्शन होगा ठाकुर जी की इच्छा से तो अच्छा है, उसका जो गला है उसका रंग जैसा है वैसे रंग का वस्त्र वो पहनती है, नीले रंग का, ठाकुर जी की याद हमेशा बनी रहे, इस भावना से राधा रानी, विशाखा देवी, चंपकलता देवी नीले वस्त्र को धारण करते हैं हमेशा। इनका हर एक सखी का एक कुंज है जहां पर वो, जैसे कि होम, इट्स लाइक पर्सनल क्वार्टर्स और पर्सनल गार्डन, हर एक सखी का अपना अपना एक कुंज है, इनका कुंज का नाम है विशद कुंज। हर एक सखी, सब सखियां सब चीज में उत्कृष्ट है, कोई इसमें सवाल नहीं, लेकिन क्या होता है ना, जब 10 श्रेष्ठ लोग साथ में आते हैं तो एक किसी एक वस्तु में एक्सपर्ट होता है, कोई सब लोग गाने में एक्सपर्ट है लेकिन एक व्यक्ति उस राग में एक्सपर्ट है, दूसरा व्यक्ति उस राग में एक्सपर्ट है, सब लोग सब वाद्य बजाते हैं लेकिन कोई व्यक्ति वायलिन में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति संतूर में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति वीणा में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति सितार में एक्सपर्ट है। ये सब जो है वो बेस्ट 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 लोगों का वर्णन हो रहा है। सब लोगों में सब कुछ आता है, लेकिन कुछ कुछ लोग कुछ कुछ वाद्यों में, कुछ कुछ रागों में, कुछ नृत्यों में कुशल रहते हैं। तो इस प्रकार से जो संपत दास जी हैं, ये स्वर मंडल मतलब संतूर, देखा आपने संतूर दो वाद्य प्रकार के होते हैं, एक तंतु वाद्य होता है और एक बिना तंतु का वाद्य होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन स्ट्रिंग इक्विपमेंट्स। जैसे हारमोनियम है वो नॉन स्ट्रिंग होता है, लेकिन सितार है, एक तारी है, वीणा है, सब तार वाला टिंग 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 और इस तरह से बजता है। तो संतूर वाद्य में चंपक लता जी बहुत कुशल हैं, और उनके हर आठ गोपियों में जितनी भी गोपियां हैं, हर गोपी के अंदर तीन गोपियां रहती हैं जो उनकी सहायता करती है। उनको कहते हैं मंजरी, सखी के बाद में सखी की सेवा मंजरी करती है, मंजरी सखियों के प्लान में असिस्ट करती है। तो तीन मंजरियां हैं, हर एक मंजरी के नीचे तीन तीन करोड़ गोपियों का होता है युद्ध जो उनकी सहायता करते हैं। किनकी सेवा करने के लिए? सखी की सेवा करने के लिए। सखी की सेवा करने के लिए मंजरी के एक एक मंजरी के पास तीन तीन करोड़ गोपियां होंगी। जितना विस्तार पूर्वक काम करते होंगे, तीन करोड़ को सेवा में लगाना उतना मुश्किल काम है। आई कैंप में 300 लोगों को सेवा में लगा लगा हमारा पसीना छूटता है। कैसे लोगों को एंगेज रखें, कैसा उनका मन जो है एक जगह पर रखें, उनका मन यहाँ वहाँ ना बैठे, हाउ टू एंगेज देम 24 आवर्स। सभी चैलेंज है ना, पर भगवान के धाम में चैलेंज नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि भगवान के धाम में कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। हमारे में समस्या क्यों आते हैं एंगेज करने की? क्योंकि हम अलग अलग सोचते रहते कि हम यहाँ जाएंगे, बीच में दो घंटे में जाके उधर जाएंगे, वो मंदिर में जाएंगे, वहां मिल के आएंगे, किसी को भजी खा के आएंगे, पकौड़ा खा के आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, बीच में जाके घूमेंगे, अलग अलग विकल्प मन में चलते रहते हैं, इसलिए उसको लगाना बहुत मुश्किल रहता है। वहां पर कोई समस्या क्यों नहीं है? एवरीबॉडी 100% मोर देन 100% इंटरेस्टेड इन्वॉल्व इन टू सर्विस, एकाग्रता है उनके मन में और कोई मन में विचार नहीं, अन्य अभिलाषा शून्यम, कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, केवल सेवा, और सेवा ही जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता, यही विचार में सब लोग सेवा करते हैं। तीन करोड़ हो या तीन आपजे हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है कि एक सही कहां भाग गई, अरे कहां गायब होगी, नहीं नहीं वो किसी सखा को मिलने गई, ऐसा नहीं होता है। एक लक्ष्य में रहते हैं विचार करते हुए। तो इनकी तीन मंजरियां हैं सेविका इनकी, एक पालिका मंजरी है, एक विलास मंजरी है और एक केली मंजरी है। इनकी मेन सेवा क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ लोग सेवा करते हैं, जनरल सेवा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों की सेवा बहुत विशेष होती है, वेरी स्पेशलाइज्ड, वेरी डिटेल्ड एंड एकदम एक्सपर्ट रहते हैं उसके अंदर। कितना भी छोटा काम भी हो, इतने कुशलता से करते हैं कि वो छोटा काम भी बहुत महान हो जाता है उनकी भावना से, उनके समर्पण से, उनकी कुशलता से। एक काम को कहा कि आप एक फूल जो है वहां लगा के आओ, तो आप ऐसा लगा के आ सकते हो, लेकिन आप अगर उसको अपनी तरफ से फुलदानी लेके आओगे, इसके साथ में कुछ और पत्ते लगाएंगे और उस फूल को रखेंगे, 10 लोग वो फूल 10 तरीके से रखेंगे अपने अपनी भावना के अनुसार। वैसे गोपियां जो है वो अपना अपना छोटा छोटा काम भी है बहुत ही सावधानी से, हृदय से, विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक और कुशलता पूर्वक करती। तो इनकी मेन सेवा जो है, देखो ऐसा है कि भगवान जो है ना उनके लिए प्रसाद बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है, तो उसमें सबसे प्रधान, सब गोपियां एक्सपर्ट है वो बनाने के लिए, लेकिन सबसे प्रधान उसमें जो है ना, सब जो मानते हैं और सब स्वीकार भी करते हैं कि यशोदा मैया जो है और राधा रानी, ये सबसे बेस्ट भगवान के लिए कुक्स है। और यशोदा को पूछेंगे तो कहेंगे राधा रानी सबसे बेस्ट है, राधा को पूछेंगे तो बोलेंगे यशोदा माता सबसे बेस्ट है। इसका प्रमाण क्या है? जब राधा रानी को वरदान मिला दुर्वास मुनि का, इसके हाथ से जो भी व्यंजन बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी उसको पाएगा वो रोग से मुक्त हो जाएगा, और जो भी उसको पाएगा वो व्यक्ति हमेशा विजयी रहेगा, हमेशा विजय को प्राप्त करेगा। तो यशोदा मैया थोड़ी बोलती है अरे मेरे से कोई ज्यादा एक्सपर्ट हो गया अभी, नहीं, तुरंत वो नम्रता से हाथ जोड़कर कीर्ति मैया के आश्रम मतलब महल में गई बरसाना में नंदगांव से, और बहुत संकोच से, लज्जा से, पूछू कि नहीं पूछू ऐसा पूछते पूछते बाद में पूछ लिया उसने कि क्या मेरे कन्हैया के लिए तुम्हारी कन्या राधा रानी भोजन बना सकती है क्या? नो कॉम्पिटिशन, अरे मेरा सेवा छिन रही है, मेरा सेवा लेके तो मैं क्या करूंगी, फिर मेरे से ज्यादा बना रही है अच्छा खाना, ऐसा नहीं भाव। ये सोच रही है जो बेस्ट है वो मेरे खाना को मिलना चाहिए, मेरा पद हो या ना हो। तो विनती कर रही है, उसके सामने तो छोटी सी कन्या थी, वो 5 साल की 6 साल की उम्र थी उसकी, और यशोदा मैया 80 साल के ऊपर की उम्र थी, बुजुर्ग थी, सीनियर थी, एक्सपर्ट थी हर चीज में, फिर भी एक कन्या को रिक्वेस्ट कर रही है उसकी माता के लिए, इसको भेज सकते हैं। और जब हाँ कहते हैं तो उनको रोज जाकर उनके लिए कुआं खोदती है, वो रसोई बना देती है, सब साधन जोड़ देती है, और खुद खाली देखते हैं, खाली बस क्या देखते हैं, क्या चाहिए आपको बताओ, मैं दे दूंगी, आप बनाओ। आप जरा कल्पना कीजिए कि आप 80 साल की बुजुर्ग माता जी हो और आप 6 साल की कन्या को अपने घर पे भोजन बनाने के लिए बुलाए हो, 10 बार जो क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं तड़का ऐसा लगाना, अरे तो डाला क्या नहीं इसमें, अरे बाद में डालना, पहले डालना, बाद में डालना, ये डाला नहीं अपने इसमें, अरे टमाटर बहुत जरूर था इसके अंदर, अरे नमक कितना मत डालो, कम डालो। आप अपना जो एक्सपर्टीज है कहीं ना कहीं प्रकट करेंगे, अरे ऐसा करो, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, समझ लो मैं भी जानती हूँ, सब नम्रता से खड़ी है, चूल्हा बना के दे रही है, सब कुछ बना के दे रही है, सब व्यंजन साधन मसाला सब्जी फल सब कुछ दे रही है, और केवल खड़ी है वहां पर रोज, हाँ नॉट वंस इन अ मंथ, एवरी सिंगल डे केवल राधा रानी को असिस्ट करने के लिए खड़ी है। जो आगे होने वाली राधा रानी की सासू जी है वो सेविका के सामने खड़ी है, सेविका के रूप में खड़ी। यही ब्रज का भाव है, समझने की कोशिश करो, ब्रज में यही भाव है, दास दास अनुदास, कोई ऊपर नहीं आता आना चाहता है, नोबडी वांट्स टू बिकम बिग। कोई माला बनाएंगे ना ये गोपियों की सेवा में, माला बना के अर्पण करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे मैं जाके अर्पण करूं क्या, नहीं, उनके हाथ में देंगे, वही इनकी सेवा है। अपने जो इष्ट हैं, अपने जो अधिकारी हैं, जो अपने सीनियर हैं, उनके हाथ में सेवा अर्पण करना है, बाद में वो कैसे भगवान को अर्पण करना है वो देखेंगे। इसमें जो पालिका मंजिल है, जो विलास मंजिल जो है, ये कभी भी कोशिश करते नहीं कि इतनी बार तुमको माला बना के दे, कभी तो हमको मौका दो हम जाके तुम पहना देंगे, नहीं, नेवर। ये नम्रता का भाव है। तो इसमें राधा रानी और यशोदा माता सबसे कुशल है भोजन बनाने में, उसके बाद में नंबर लगता है चंपकलता देवी का। चंपकलता देवी भी रसोई में बहुत ही व्यंजन बनाने में बहुत कुशल है, इसलिए हम सबको हमारे किचन में लिखना चाहिए कि दिस इज यशोदा राधा एंड चंपकलता किचन एंड आई एम देयर सर्वेंट, ऐसा लिख लो आपके किचन में। ये भाव बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के रसोई बनाने का अधिकार जो है यशोदा राधा रानी और चंपकलता जी को, और हम अपने रसोई में अगर खाना बनाते हैं अपने चार्ज में, लेकिन भाव रहना चाहिए कि मैं यशोदा रानी राधा रानी का सेवक हूँ, उनकी कृपा से मैं खाना बनाऊंगा। इसका एक अच्छा प्रमाण मैं पूछता हूँ, हमारे जो गोस्वामी हैं वो आपको कल मिलेंगे, नंदगांव जाएंगे कल, रमेश चंद्र गोस्वामी जी, उन्होंने एक बढ़िया बात मुझे बताई थी कि नंदगांव में गोस्वामी के बीच में ऐसी प्रथा होती है कि जब बालक 5 साल का होता है, 7 साल का होता है गोस्वामी को घर में, ब्राह्मणों के घर में, तो वो ठाकुर जी की सेवा में उनको लगा देते, मतलब दे इंट्रोड्यूस हिम, इनिशिएट हिम। उनका एक मंदिर है वहां पर, लुप्त गोपाल जी का मंदिर है, जिसके ठाकुर जी के चरणों में कमल है, ऐसा बना हुआ मूर्ति के अंदर ही बना हुआ। उस मंदिर में गोसाइयों की दीक्षा होती है बालकों की, और जनीन पहन के उन बालकों को वो नंदलाला की सेवा में ले लेते हैं। तो गोस्वामी जी हमारे जो रमेश चंद्र जी, आज तो उनकी कुछ उम्र 65 साल की हो गई होगी, 60 साल के ऊपर हो गई, रिटायर हो गई। तो कहते हैं कि जब मैं बालक था तो रोज 8 बजे उठता था, फिर जब 7 साल का हुआ तो मैया ने कहा अभी आपका जन्म तो आपका हो गया, अभी आपकी दीक्षा होकर आपको लाला की सेवा में जाना होगा। तो कितने बजे उठना होगा, बोले 3:30 बजे मंगला होती है। कितने बजे होती है, 3:30 को मंगला आरती होती है, मतलब पुजारी को कब उठना चाहिए। पहले पुजारी उठेगा, खुद स्नान करेगा, मंदिर में जाएगा, ठाकुर जी के लिए भोग बनाएगा, भोग लगाएगा, थाली बनाएगा, फिर ठाकुर जी को उठाएगा गीत गाकर, फिर ठाकुर जी भोजन करेंगे, सुबह का मंगल भोग, मिठाई खाएंगे, 6 प्रकार के लडवा खाएंगे, फिर ये सब होकर ठीक 3:30 बजे पर्दा खुलेगा और फिर आरती होगी, मंगल आरती। अरे बाप रे, मैं तो 8 बजे उठता था, मैं कैसे उठूंगा मैया, मुझे चिंता हो रही है, मैं गोसाई कैसे बनूंगा, अभी ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो नहीं उठ सकता हूँ। तो मैया ने केवल सिंपल बात बताया, एकदम सिंपल, कि हम सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, बहुत प्रेरणा मिली इससे। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, यशोदा मैया के पास जा और प्रार्थना कर, वो सब ठीक कर देगा। और वो गए छोटे से बालक दर्शन करने, दर्शन जाएंगे ना आप तो देखेंगे आप कृष्ण भगवान है, बलराम जी है, यशोदा है, नंद बाबा है। तो मंदिर गए मतलब 8 बजे के बाद उठे के बाद 10 बजे 11 बजे गए होंगे, प्रार्थना किया मैया कल से मेरी सेवा आरंभ हो रही है, तू ही जगा ले, तू ही कृपा कर दे। फिर अगले दिन से मैं 2:30 बजे उठने लगा और सेवा में जाने लगा। 7 साल का बालक है ये, तो ये रहस्य है। अपने आप में हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन जो कृपा पात्र हैं, जो सेवायत हैं भगवान के, उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे सब कृपा प्राप्त हो जाएगी। हमारे अंदर हाथ से दिव्य काम होते रहेंगे, क्षमता आएगी, कृपा मिलेगी, सब कुछ होते रहेगा। इस तरह से ये जो हम किचन में अपना नाम, इनका नाम क्यों लिखेंगे, कि हम चाहते हैं कि उनकी कृपा, उनकी कुशलता, उनका प्रेम, जिस प्रेम से वो ठाकुर जी ने खाना बना दिए है, थोड़ा सा उसका अंश हमारे अंदर भी आ जाए और रोज याद करेंगे तो भाव बनेगा ना, सेवक भाव। तो चंपकलता देवी जो है भगवान का भोजन बनाती है। दूसरा जो है कि कृष्ण भगवान बहुत प्रकार का खेल खेलते हैं। अभी कल आपको बताया आंख मिचोली, लुका छुपी, कभी भूमि पर खेलते हैं, कभी जल के अंदर खेलते हैं, राजनीति तो है ही, और रंग खेलते हैं, फिर होली खेलते हैं, फिर क्या क्या खेलते हैं, यहाँ पर अनंत खेल है, अनंत खेल भगवान खेलते हैं अपने सखियों के साथ, सखाओं के साथ। तो एक खेल है सारी पाठ यानी कि दूत क्रीड़ा, आपने देखा वहां राजा रानी बैठ के चौसर खेलते रहते हैं और वो कौरवों ने उसका गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन चौसर जो है बहुत बढ़िया खेल है। हमेशा जो नवविवाहित पति पत्नी होते हैं वो चौसर खेलते हैं एक दूसरे का प्रेम बढ़ाने के लिए, गोटी को मारते हैं और पति को हराते हैं, पत्नी पति को हराते हैं, पति पत्नी को हराते हैं, ये प्रेम का लक्षण है। तो वो क्रीड़ा जो है वो सब गोपियों के साथ, राजा के साथ कृष्ण खेलते हैं, और इस सारी पार्ट इस चौसर के खेल में हमारे जम्बलदा जी बहुत एक्सपर्ट हैं। और एक खेल होता है पाशा खेल, अलग एक पाशे डाल के खेलते हैं। राधा रानी और कृष्ण भगवान जब खेलते हैं तो राधा रानी को कृष्ण भगवान सखियों के साथ में बहुत सारे गेम में परास्त कर देते हैं, तो लास्ट में फिर राधा कुंड के किनारे राधा रानी उनको पाशा खेलने के लिए इन्वाइट करते हैं। पाशा खेल इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ चौसर। तो वो पाशा खेल में राधा रानी और सखियां बहुत एक्सपर्ट है और लगातार भगवान को उसमें हराते रहते हैं। तो जब भगवान बहुत हारना होता है तो फिर वो पाशा खेल खेलने का प्रस्ताव रखते हैं, चलो पाशा खेलेंगे अभी थोड़ा बहुत जीत जाएंगे इसका। तो इस पाशा खेल में चंपकलता देवी राधा रानी के पक्ष में बैठकर उनको सहायता करती है। जैसे था ना वो दुर्योधन के पक्ष में कौन था, शकुनी मामा, हाँ जी कितना चाहिए। तो ऐसे राधा रानी के रूप में, राधा रानी के पक्ष में बड़े प्रेम से चंपकलता देवी सहायता करती है और हमेशा कृष्ण भगवान को परास्त कर देती है। इनका स्वभाव ऐसा है कि बहुत तेज हैं और अपना मत व्यक्त करने में बहुत कुशल है, इसको इंग्लिश बोलते हैं असर्टिव, अपना बात बोलने में वो इसके जाते नहीं, शी मेक्स हर पॉइंट वेरी नाइसली। सो बहुत ही तेज हैं और बहुत ही असर्टिव हैं। गीत गाने में बहुत ही मशहूर हैं गायन में, और ये सब सखियों में ब्रज में बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनका और एक कला है इसके मन के पास कि जब भगवान की लीला होती है तो मिट्टी के बर्तन बनाते ना, अभी तो सब स्टील के पीतल के आ गए, उस समय ब्रज रस से मिट्टी बनती थी, तो ये पात्र बनाने में बहुत कुशल है। और मिट्टी से पात्र बनाएंगे और फूलों की माला बनाएंगे और पत्तों से, हाथ से पत्ते बनाएंगे, हाथ से पत्तों के व्यंजन बनाएंगे, फूलों के बिस्तर बनाएंगे, फूलों की माला बनाएंगे, फूलों का कमान बनाएंगे, उसको कहते हैं पुष्प विधान, पुष्प मंडल, पुष्पशैया, पुष्प माला, ये सब पृथ्वी से बनाएंगे, वो मट्टी से बनाएंगे। हाँ अब जब जाएंगे हम जेवर कुंड में कल, तो कैसे मट्टी से बर्तन बने जाते हैं उसकी कहानी आपको बताएंगे। तो ये ब्रज रज से बर्तन, फूल, पत्ते और उसके द्वारा अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है वो करने में बहुत कुशल है। और खाना बनाने में भी जो मिठाइयाँ हैं वो उनको बनाने में बहुत कुशल हैं, और सब सखियों में राधा रानी के पश्चात इनके जैसा कुशल भोजन बनाने में कोई नहीं है। और लास्ट में एक एक सेवा में सब लोग एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन कुछ सेवाएं लीला होने के पहले तैयारी में होती है और कुछ सेवाएं लीला होते हुए लीला में होती हैं। समझो आपके घर में अभी शादी होने वाली है किसी की, तो खाना वाना बनता है तो शादी होने के पहले बनता है ना, और सभी बनते रहता है, फिर खाना परोसने की सेवा होती है दूल्हा दुल्हन को और मेहमानों को, तो कुछ लोग अलग आके सेवा करते हैं परोसने की, कुछ बनाने के लोग सेवा अलग करते हैं। जब लीला शुरू होती है शादी की तो फिर वो अलग लोग आते हैं, फिर कोई जलेबी देगा, कोई मिठाई देगा, कोई इसका आग्रह करेगा, कोई इसका सत्कार करेगा। तो वैसे इनकी रसोई बनाने की सेवा है, लेकिन जब भोजन बनाने का मतलब परोसने का सेवा होता है तो ये चावल सेवा करते हैं। इसमें जब रास लीला होती है तो भोजन भी बनता है, भोजन बना के लेके भी आएंगे, लेकिन जब रास होगा तभी जब पसीना आएगा राधा कृष्ण के ऊपर तो ये चावल सेवा करेंगे। ऐसे सेवाएं लगी रहती है। कोई पान बनाएगा लेकिन तो पान देगा कोई और हाथ में, कोई मोर पंख लेके आएगा और चलाएगा, कोई और सेवा करेंगे इसकी। राधा कृष्ण की जो पुष्पशैया है वो कोई बनाएगा, लेकिन उनको लेके आएंगे बैठाने के लिए कोई और लेके आएगा, बोले यहाँ बैठी, फिर उनको तकिया देंगे, फिर उनको व्यंजन देंगे, समय पर पान तांबूल देंगे, समय पर चमन करेंगे, समय पर चरण दबाएंगे। तो एक ही सखी अनंत प्रकार की सेवा करती रहती है, कुछ में वो कुशल है और कुछ वो नाकुशल होते हुए भी सेवा के रूप में हमेशा करते रहते हैं। जैसे वृंदा देवी शाखा देवी बताएंगी वैसे सेवा करते रहेंगे। लास्ट में लिखा है कि राधा रानी को बड़ी प्रिय है हरे कृष्ण। हम लोग संपर्कता देवी को प्रार्थना करेंगे, जो लोग खास करके भोजन बनाते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि भोजन जो होता ना वो प्रेम के कारण स्वादिष्ट बनता है, है ना। तो 5-star होटल में जाकर हम लोग 10 आइटम खाएंगे और घर में आके माँ के हाथ का दाल चावल खाएंगे, कौन सा अच्छा लगेगा आपको? हाँ, जबान बोलेगी वो 5-star का अच्छा है, हृदय बोलेगा माँ का अच्छा है। माँ का खाना जो है वो हृदय को छुएगा, बाहर का 5-star खाना जो है वो एक्सपर्ट PhD शेफ ने बनाया वो जबान को बोलेगा हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हृदय की संतुष्टि जो प्रेम से होती है। तो खाने में भोजन में स्वाद आता है प्रेम के कारण, और इनका खाना सबसे अच्छा बनता है क्योंकि इनके हृदय में बहुत प्रेम है भगवान के, कैसे भगवान को संतुष्ट करे इस भावना से खाना बनाए। तो ये जो स्थान है बहुत ही पवित्र, बहुत ही अलौकिक स्थान है, इसमें रास मंडल है ये जहाँ पर आप लोग बैठे हुए, इसमें झूला भी लगा हुआ है, इसमें राधा और कृष्ण के लिए झूले की व्यवस्था सब सखियां करते हैं। तो अभी बोलेंगे झूले की व्यवस्था में कुछ सखियां झूला बनाएंगे, कुछ फूल का बनाएंगे, रत्नों का बनाएंगे हिंडोला, और कुछ झुलाने की सेवा करेंगे, कुछ उसमें हार पहना के खिलाएंगे, लेकिन कुछ लोग पीछे भोजन बनाएंगे कि झूला झूलने के बाद भूखे हो जाएंगे, तो कुछ आके भोजन बनाएंगे, कुछ लोग भोजन परसेंगे, भोजन के बाद कुछ लोग थाली लेके जाएंगे, कुछ लोग आके तांबूल देंगे, कुछ लोग हवा करेंगे सुला देंगे, हर एक प्रकार की सेवा होगी। और करोड़ों से अनंत करोड़ों गोपियां हैं, सभी अपनी सेवा में रत रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहला रास जो है यहाँ से आरंभ हुआ था, इसलिए रास मंडल के उगम की स्थली है, और यहाँ पर भगवान ने रास किया था, फिर उसका प्रकाश सब जगत हुआ है। और रास का संकल्प जो होता है ना, जो आप पता है ना आपको शादी में जब संकल्प होता है शादी का, तो दूल्हे को जो पुजारी होते हैं वो लेके आते हैं और हाथ में कंकर बांधते हैं ना, हाँ बांधते हैं ना हल्दी का टुकड़ा और वो डोरी बांध देते हैं, वो कुछ मंत्र बोलते हैं और आश्वासन करवाते हैं। वो कंकर बांधने का जो विधि है वो किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में होता है, जैसे कि विवाह करके आप विवाह जीवन दंपति जीवन आरंभ करेंगे, आगे गृहस्थ के रूप में रहेंगे और संतति होगी और संतों की सेवा करेंगे, दान धर्म करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, भोजन बनाएंगे, धन कमाएंगे और बच्चों को संभालेंगे, संस्कार देंगे, तो ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है गृहस्थ जीवन का। तो उसके पहले दूल्हे के हाथ में कंकर बांध देते हैं कि आप ये संकल्प कर रहे हो कि मैं अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा और ये सब आगे के कार्य निभाऊंगा अच्छी तरह से। तो वैसे रास के आरंभ में यहाँ पर संकल्प किया गया था, ठाकुर जी को कंकर बांधा गया, इसलिए यहाँ पर एक कुंड है। जब अभी कथा खत्म होने के बाद में हम सब जाएंगे, ये जो रास्ता है यहाँ से आगे जाएंगे तो कंकण कुंड का दर्शन है, यहाँ पर भगवान को कंकण बांधा गया था और वो संकल्प करके भगवान ने रास का आरंभ किया। तो बहुत सुंदर स्थान है, इतना रमणीय स्थान है, सभी इंद्रियों को सभी प्रकार के भावनाओं को संतुष्ट करने वाला है। आप सबको मैं ये आवाज क्यों आ रहा है इसलिए आप सबको मैं यहाँ पर आने के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, चंपक दत्ता देवी की जय।